ओम शांति। पांचवी और छठवीं शताब्दी के बीच एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति जो कि महात्मा बुद्ध के 27वें उत्तराधिकारी थे हन्यतरा, जैसी चेतना की अवस्था बुद्ध की थी वैसी ही अवस्था उनकी भी थी। एक बार दक्षिण के किसी राजा ने उन्हें अपने यहां बुलाया। वो राजा कुछ अनुभव करना चाहता था और वो चाहता था कि बुद्ध के जो सूत्र है वो मैं उन्हीं के उत्तराधिकारी के मुख से सुनूं। कैसा अनुभव होता है ये वो जानना चाहता था। तो हन्यतरा वहां जाते हैं, परंतु अपने साथ एक सेवक भी ले जाते हैं। और जब राज्य में पहुंचते और राजा बहुत स्वागत करता है और बाद में सभा में कहा जाता है कि उन सूत्रों को पढ़ा जाए, तो हन्यतरा अपने आप में चुपचाप बैठे रहते हैं और उनके साथ जो उनका सेवक था उसको कहते हैं कि तुम पढ़ो। तो राजा थोड़ा सा दुखी होता है ये देखकर कि मैं तो इनके मुख से सुनना चाहता था और जो सेवक जिस प्रकार से सूत्र पढ़ता है उसमें बहुत सारी व्याकरण की त्रुटियां, उच्चारण की त्रुटियां, परंतु इतनी बड़ी सभा राजा क्या करे। परंतु वो तो चाहता था कि मैं इनके ही मुख से सुनूं, ये ज्ञान मैं वैसे ही सुनना चाहता हूं जो बुद्ध ने जिस अवस्था में सुनाया। और धरती पर इसके अतिरिक्त तो और कोई व्यक्ति नहीं है, परंतु अब वो भी क्या करे, क्योंकि उन्होंने ही कहा था हन्यतरा ने अपने सेवक से कि तुम सुनाओ। तो लंबा समय तक वो चला, बुद्ध के उत्तराधिकारी जो थे वो चुपचाप बैठे रहे मौन में। और जब वो प्रवचन पूरा हुआ सेवक का, तो राजा उसके पास गए हन्यतरा के और कहने लगे, कृपया मुझे बताएं क्या कारण है, आपने सूत्र क्यों नहीं पढ़े। तो राजा कहते हैं, हन्यतरा कहते हैं, मैंने ही तो पढ़े, सूत्र का सार था संपूर्ण जागरण, संपूर्ण होश, कंप्लीट अवेयरनेस, और मैं उसी अवस्था में स्थित था। मेरा न बोलना ही मेरा बोलना था, क्योंकि मैं इतने दूर से आया हूं तो मुझे लगा क्यों ना तुम्हें वो दिया जाए जो कि असली चीज है। तो राजा मौन हो जाता है। कहानी और आगे से थोड़ी है कि राजा कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे 3 बेटे हैं छोटे, आप उनको आशीर्वाद दो। और वो अपने 3 बेटों को बुलाता है और राजा हन्यतरा को एक अत्यंत बहुमूल्य हीरा देता है सौगात गिफ्ट के रूप में। 3 बेटे होते हैं। पहला बेटा सामने आता है जिसकी उम्र 15 साल की थी। तो हन्यतरा उसे आशीर्वाद देने के बजाय पूछता है, ये क्या है, हीरे को दिखाते हुए कहता है। वो 15 साल का बच्चा कहता है, ये अत्यंत बहुमूल्य हीरा है, ऐसा हीरा इस संसार में और कहीं नहीं हो सकता। और उसकी बात सच थी, उसकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र थी। जो उस छोटे बच्चे ने ये जान लिया कि ये हीरा बहुत ही बहुमूल्य है। फिर दूसरा बच्चा 10 साल की उम्र, उसको भी हन्यतरा यही पूछता है, ये क्या है। तो वो बच्चा कहता है, ये अत्यंत दुर्लभ हीरा है, और ऐसा हीरा ये मेरे ही पिताजी के पास हो सकता है और किसी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी सुरक्षा के लिए ही कितनी बंदोबस्त की आवश्यकता है। ये जो दूसरा बेटा रहता है ये पहले से अधिक बुद्धिमान होता है। फिर एक छोटा सा तीसरा बेटा होता है, 7 साल की जिसकी उम्र, उसको भी पूछा जाता है ये क्या है बताओ, तो वो कहता है ये मुझे तुम क्या पत्थर दिखा रहे हो। 7 जो हीरा है वो तो स्वयं आप हो, और आपके अंदर जो चेतना है वही सच्चा हीरा है। हन्यतरा कहता है राजा से, राजन मैं तुम्हारे बुलाने पर यहां नहीं आया था, मैं इसकी खोज में आया था, मैं इसी बच्चे की खोज में आया था, और यही बच्चा है जो कि बुद्ध का 28वां उत्तराधिकारी बनेगा। आगे चलकर यही बच्चा जिसका पहले नाम बोधितरा था, बाद में यही बोधिधर्मा बना। भारत से पहली बार 5वीं और 6वीं शताब्दी में बुद्ध धर्म को चीन पहुंचाने वाला, चैन बुद्धिज्म का पैट्रियार्क, पहला व्यक्ति जिसने भारत से बुद्ध धर्म को चीन में पहुंचाया, वो था बोधि धर्मा। और वो हन्यतरा 27वां उत्तराधिकारी कहता है कि मैं इसी की तलाश में आया था, क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने इससे कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और तेरे सामने एक हीरा रखूंगा, अगर तू पहचान ले कि हीरा वो नहीं मैं हूं, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ही हो जो कि महात्मा बुद्ध के 28वें उत्तराधिकारी बनोगे। छोटा सा बच्चा क्या कहता है, ये हीरा है ही नहीं, ये क्या है, पत्थर है। हीरा कौन है, तुम हो। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, बाबा ने हमें 3 सौगात दी है, एक युग, दूसरा मिलन, तीसरा जीवन, और ये भी बताया है कि तुम कौन हो। तुम कौन हो, हीरा। क्या सौगात दी है, सबसे पहली सौगात तो इस युग की सौगात है, हीरे समान संगम युग की सौगात। दूसरा यह ब्राह्मण जीवन, कैसा जीवन है, हीरे समान जीवन है, अमूल्य जीवन है। और तीसरी सौगात मिलन मेला, यह भी मेला कैसा है, अमूल्य है। परंतु इन तीनों से बढ़कर तुम हो, और तुम कौन हो, हीरा हो। संसार में भी हीरे होते हैं, तुम चैतन्य हीरा हो। 5 खूबियों वाला, पहला चमकता हुआ हीरा। कैसे हीरे हो, चमकते हुए, कोई धूल इसमें नहीं है। दूसरा बेदाग, कोई दाग इसमें लगा नहीं है। तीसरा सच्चा हीरा, झूठ इसमें नहीं है। सच जिसमें भरा है, फॉल्सहुड ट्रेड जहां नहीं है। चौथा अमूल्य हीरा, तुम्हारे सामने संसार के हीरे क्या है, 5 पैसे के। और 5वां नंबर 1 हीरा, नंबर 2 नहीं, नंबर 2 अर्थात शोक वाटिका में बैठी हुई सीता, नंबर 2 अर्थात फरियाद करने वाले। तुम फरियाद नहीं, तुम याद में रहने वाले हो। तुम शोक वाटिका में नहीं, तुम कहां हो, बाप के संग में रहने वाले हो। ऐसे तुम हीरे हो, कैसे हीरे, चमकने वाले, कैसे हीरे? बेदाग, कोई दाग नहीं। कैसे हीरे? सच्चे। कैसे हीरे? अमूल्य, जिनका मूल्य नहीं लगाया जा सकता, प्राइसलेस। कैसे हीरे? नंबर वन, टू नहीं वन, फरियाद नहीं याद, शोक वाटिका नहीं अशोक वाटिका। व्यर्थ संग में नहीं, कुसंग में नहीं, संपूर्णता के संग में रंगी हुई आत्माओं को। किस रंग में रंगी हुई? संपूर्णता के रंग में रंगी हुई आत्माएं हो। तो ये हीरा अगर इतना चमकीला है तो कौन सी धूल, कौन से दाग इसको लग जाती है? कौन सी? तुम्हारी कहानी प्रसिद्ध है। कौन सी? गीता या रामायण? क्यों, गीता हमारी कहानी नहीं है? गीता अर्थात स्वचिंतन, गीता अर्थात स्वदर्शन, गीता अर्थात नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। स्थितोहम गतसंगः, स्थितोहम गतसंदेह। अर्जुन की यह स्थिति, ये वचन कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे केशव, मैं अब कैसा हूं? संदेह से परे हूं, स्थित हूं ऐसी अवस्था में। करिष्ये वचनम तव, तू जो कहेगा, आप जैसा कहेंगे, अब मैं वैसा करने के लिए कटिबद्ध हूं, तैयार हूं। रामायण अर्थात क्या? पर दर्शन और पर चिंतन। बाबा ने कहा तुम ये प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाते हो। क्या, गीता या रामायण? रामायण। रामायण तो सुनी है ना सबने, भारत में तो बचपन से सुनाई जाती है। पांच पात्रों के परचिंतन और परदर्शन पर खड़ी है पूरी रामायण। पहली मंथरा, देखा इसको राज्य मिल रहा है, देखा और सोचा। दूसरी कैकेयी, देखा और फिर सोचा उकसाने के बाद। तीसरा शूर्पनखा, देखा ये तो बहुत ही सुंदर अच्छा कुमार है, कुमार क्या करेंगे अगर शूर्पनखा देखे तो? कुमार बैठे हैं यहां, तलवार है ना या धनुष बाण क्या है? चौथा रामन स्वयं, परचिंतन और परदर्शन करने वाला, पर स्त्री। और पांचवा कौन बताएगा? कौन है पांचवा पात्र रामायण का परचिंतन और परदर्शन करने वाला? धोबी, प्रजा। तर्क बहुत सुंदर थे, राम छद्म वेश धारण कर जब राज्य में जाता है इनकॉग्निटो, क्या सुनता है लोगों की बातें, क्या क्या कहते रहते हैं। अगर ये हो गया, ये राम की निजी कमजोरी है, उसका सीता में मोह है, नहीं तो क्यों उसने रखा है अपने पास। ऐसी ऐसी बातें सुनता है कि हृदय विदीर्ण हो जाता है। लोग कहते हैं बहुत मोह है उसका, लोगों की बातें, संसार के लोगों की बातें। कोई लोग समझाते भी है कि उसने तो अग्नि परीक्षा दे दी है, परंतु हमने थोड़ी ना देखी, बंदरों और भालुओं के सामने दी हुई अग्नि परीक्षा का क्या महत्व? ये संसार है, तो दूसरा व्यक्ति पूछता है क्या वो सीता हर गांव-गांव में जाके परीक्षा दे। एक तीसरा व्यक्ति कहता है उसे अयोध्या की रानी बनना है तो देना पड़ेगा। ये संसार है। तो सारी रामायण किस पर खड़ी है? पर खड़ी है। पर निंदा, पर ग्लानी, पर दोष, पर संग, पर अध्ययन, पर अवलोकन, पर स्थिति, पर देश, पर चिंतन और पर दर्शन, दोनों ही क्या है? पतन की जड़। कई बार स्लोगन में आता है। बाबा ने कहा बीज को खत्म करो। क्या कर दो? ये जो बीज है इसको ही खत्म कर दो। बच्चे क्या कहते हैं बाबा से? कौन सी दलीलें हैं बच्चों की कि करते नहीं है हो जाता है, चाहते नहीं है हो जाता है, सफेदी कर लगाते हैं, व्हाइट वॉश। पर विदेश में, फ्रांस में एक बहुत बड़ा दार्शनिक जीन पॉल सात्र अस्तित्ववाद का जिसमें सिद्धांत रखा था एग्जिस्टेंशियलिज्म, उसने एक नाटक में लिखा है और वो एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है उसका, जिस पर आज तक बहुत सारी डिबेट्स और बहुत सारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जिसको स्टडी करते हैं। तीन पात्र है, तीनों को ही नरक की सजा सुनाई गई और तीन पात्र नरक पहुंचते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं, यहां तो कोई यमदूत नहीं, कोई मशाल लेके खड़ा नहीं है, कोई दुख देने वाला, दर्द देने वाला, तड़पाने वाला, पीड़ा पहुंचाने वाला, ऐसा कोई भी सितम ढाने वाला कोई भी नहीं दिखाई देता, ये कैसा नरक है? और वो कहते हैं तीनों में से एक कि जो हमने बातें सुनी थी नर्क के बारे में सब झूठी थी, ऐसा तो यहां कुछ है ही नहीं। पर एक दूसरा व्यक्ति कहता है अब हम तीनों को ही रहना है यहां इस बंद कमरे में। दी हेल इज अदर पर्सन, दी अदर इज हेल, दूसरा ही क्या है? नर्क। ये वाक्य है। सारी महानताएं अंदर छुपी है, जैसे ही बाहर दृष्टि जाती है दूसरे के तरफ और उसका चिंतन चालू हो जाता है, उसका दर्शन करने लगते हैं, यही एक सजा है। फिर उसके अवगुण भी हम धारण करने लगते हैं। The other is hell, दूसरा नरक है। इसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं ये सारे परों को क्या काट दो? कट कर दो। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर संग। एक पर के लिए छूट दी है, कौन सी? पर उपकार। तो क्या करना है? गीता का स्वरूप बनना है। रामायण को प्रैक्टिकल में अपने जीवन में नहीं लानी है। पहले से है। क्या होता है परचिंतन से? एक तो दुख, शोक वाटिका। मूल्य की हेडिंग क्या है? हानियां। तो पहली हानि दुख, दूसरा फरियाद। इसके अतिरिक्त तो भी कुछ कहा है मूल्य में? 10-12 घंटे थे बाबा, शाम को 6 बजे से दूसरे दिन 6 बजे तक। तो हानियां क्या क्या है सोचा किसी ने? शक्तियां नष्ट हो जाती है और परिस्थितियों में मजबूत नहीं रह सकते और खुशी गायब हो जाती है और उदासी सी छा जाती है और भगवान से दूर हो जाते हैं, श्रीमत का उल्लंघन होता है। ये बात अंदर ही अंदर खटकने लगती है, उड़ती कला का पुरुषार्थ नहीं हो जाता है, स्थिति डाउन हो जाती है। न अमृत वेला, न मुरली का चिंतन, कर्मयोग की स्थिति नहीं। द अदर इज हेल। किसी राज्य में एक ब्राह्मण आया और देखा कि राजा ने बहुत बड़े भोज का आयोजन किया हुआ है और वो भोजन करने वहां गया और वहां पर एक व्यक्ति था जो भोजन परोस रहा था, उसकी थाली में भी उसने भोजन परोसा और उसने थाली ली और ब्राह्मण अब भोजन करने ही वाला था कि उसको पता नहीं चला एक चील ऊपर से जा रही थी जिसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था और वो मांस का टुकड़ा उस चील ने छोड़ा और सीधा उसकी थाली में गिरा और ब्राह्मण को पता ही नहीं चला, उसने वो खाना खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए ढूंढने के लिए कि दोषी कौन, क्या वो राजा दोषी है कि जिसने ये भोज का आयोजन किया, या वो चील दोषी है जिसने ऊपर से ये मांस का टुकड़ा नीचे गिराया, या वो मांस का टुकड़ा दोषी है, या ये ब्राह्मण के कर्म दोषी है। ढूंढने लगे दोषी कौन है तो उनको समझ में नहीं आया किसको ले जाए अब इसकी मृत्यु के कारण के रूप में। थोड़ी देर वो लोग बैठे रहे यमदूत, उनकी मीटिंग ऊपर होती रही, विचार विमर्श करते रहे अब किसको ले जाए, कौन दोषी है। तो देखा हाँ ये है, एक बुढ़िया वहां बैठी थी और एक दूसरा ब्राह्मण आता है उस गांव में। वो ब्राह्मण पूछता है यहाँ का राजा कैसा है, क्या वहां भोजन के लिए कुछ मिलेगा। तो वो बुढ़िया कहती है राजा तो बहुत अच्छा है, पर एक बात याद रखना, हमने सुना है कि ये राजा ब्राह्मणों को मारता है। यमदूत कहते हैं बस ये है इसको ले जाओ। पर चिंतन और पर दर्शन, ये है वो पर चिंतन पर दर्शन करने वाली, ये योग्य है लेके जाने के। तो बाबा ने क्या कहा है, पर चिंतन पर दर्शन क्या है, पतन की जड़ है, पुरुषार्थ ही रुक जाता है। इसलिए स्वचिंतन स्वदर्शन, बीज को खत्म कर दो, बीज को नष्ट कर दो, सभी इस पर और चिंतन कर सकते हैं कि मेरे जीवन में पर चिंतन जब जब मैंने किया और पर दर्शन जब जब किया तब तब स्थिति का क्या हाल हुआ। एक तो ये बात, दूसरी बाबा ने कहा है तुम सारे जो हीरे हो यहां किस लिए आए हो, अनुभव करने के लिए आए हो। किसके द्वारा अनुभव करने के लिए, इस भूमि के द्वारा, बाप द्वारा और परिवार के द्वारा। यहां तुम्हारी क्या हो रही है, पॉलिश। तुम हीरे हो और वो भी हीरे, उस हीरे में और इस हीरे में क्या अंतर है या क्या समानता है। वो जो हीरे होते बहुत हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड। तुमको भी कैसे बनना है फिर, ऐसे शक्तिशाली हार्ड। वो जो हीरा होता है कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शिता का गुण उसमें होता है। तुम में भी जीवन में ऐसी पारदर्शिता हो, छिपाने के लिए यहां कुछ नहीं, व्हाइट वॉश करने के लिए वहां कुछ नहीं। अपनी ही कमजोरियों को सफेदी लगाते हो और कहते हो कि दूसरों की कमजोरी की वजह से ये हुआ, मैंने पर चिंतन पर दर्शन किया। व्हाइट वॉशिंग वंस वीकनेसेस। वो हीरा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है, वो हीरा फ्लोरेसेंस रहता है, रंग बिरंगी किरणें उसमें से निकलती है। क्या हमारे जीवन से ऐसी रंग बिरंगी किरणें निकल रही है। ऑक्ट्राहेड्रल होता है वो जो क्रिस्टल होता है, आठ उसके डायमेंशंस होते हैं, अष्ट शक्तियां इधर। वो जो हीरा होता है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का गुण उसमें होता है कि क्या ऐसी स्पिरिचुअल बॉन्डिंग हमें नजर आती है इस परिवार के अंदर रहते हुए। उसमें थर्मल बहुत सुंदर कंडक्टर होता है वो। क्या ऐसे स्पिरिचुअल कंडक्टर हम बने हैं? वो इरोड नहीं होता है। इरोड होना अर्थात एसिड में डाल दो या बेस में डाल दो, खरूचता नहीं है वो, कोरोजन उसका नहीं होता है। ये सारे उधर का जो हीरा है संसार के, उसके गुण हैं। वैसे ही वो बहुत कीमती होता है, बहुमूल्य होता है और विशिष्ट व्यक्तियों के पास ही होता है। जो अमीर लोग होते हैं उन्हीं के पास होता है, सबके पास हीरा नहीं होता है। क्या हमारा जीवन हीरे तुल्य अर्थात हीरे में जो सारे गुण हैं, वो सारे गुण हमारे जीवन में आए हैं? 700 डिग्री तक मेल्ट नहीं होता है, हार्ड होता है बहुत। कांच को भी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, चमकता कैसा है। तो हीरे के जो गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो इधर भी स्पिरिचुअल रूप में हमारे अंदर आने चाहिए। छिपाने के लिए कुछ ना हो, जीवन क्या हो, खुली किताब। स्पिरिचुअल पॉलिश। कौन सी पॉलिश? स्पिरिचुअल पॉलिश, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। ऐसे 10 स्पिरिचुअल पॉलिश आज की मुरली में बाबा ने सुनाए। विशेष प्रेम भी है बाप दादा का, जैसे बाप है वैसे तुम बन जाओ। जो बाप की महिमा वो तुम्हारी महिमा, सब बन सकते हैं। मार्जिन अभी है, इसके लिए बाबा हमको क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। तो सारी मुरली हम इस आधार से इसकी चर्चा करेंगे। ऐसी वो कौन कौन सी पॉलिश होनी चाहिए, या हमें खुद भी करनी है, बाबा तो करता ही है, ताकि इस हीरे को कोई दाग ना लगे, कोई धूल ना इस पर बैठ जाए, हीरा निरंतर दमकता रहे, चमकता रहे। सबसे पहली पॉलिश, पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर 1, सर्व संबंध 1 से ये पॉलिश लगानी है। कौन सी पॉलिश? सर्व संबंध 1 से निभाने की पॉलिश। दूसरों से प्यार करके तुमने देख लिया, किस किस से प्यार किया, किस किस में मोह रखा, व्यक्तियों में, पोतरे धोतरों में, किस में रखा, जेवर में, संबंधियों में, तन मन धन सब कुछ गवा दिया। धन कितना था, कहां वो सोने के महल, और अब कहां रहते हो, ईंट और पत्थर की बिल्डिंग, कहां वो महल और कहां ये झोपड़िया। पिछले संडे भी कहा था 1% बचा है। तन भी कैसा, जवानी की है, नाम की जवानी है खाली, नेमसेक। मन अशांत भटकता हुआ, क्या क्या हो गया जब जब हमने दूसरों को याद किया, क्या क्या हुआ जब जब हमने व्यक्तियों में, वस्तुओं में मोह रखा। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि भटकती रही, एक रस नहीं हो पाए, नष्टो मोह नहीं हो पाए। जो बुद्धि द्वापर से भटकती रही, अगर अब भी भटकती रहे तो क्या कहेंगे। द अदर इज हेल, द अदर इज हेल। तो पहली पॉलिश कौन सी लगानी है? सर्व संबंध 1 से, तब स्थिति एक रस रहेगी, तब मन का भटकना, बुद्धि का भटकना बंद होगा, तब नष्टो मोह स्मृति लब्धा की स्थिति होगी। जब जब व्यक्तियों को याद किया है तो स्थिति नीचे गई है, जब जब व्यक्तियों को मित्र बनाया, साथी बनाया, आधार बनाया, अवलंबन, पर अवलंबन, परतंत्र की स्थिति आ गई है। इसके लिए सबसे पहला पॉलिश कौन सा? सर्व संबंध एक से, यही गीत गाते रहो। कौन सा? एक ही बाप, दूसरा न कोई। बाबा ने आगे मुरली में कहा है, यही निरंतर की तपस्या है। टीचर से मुलाकात, क्या है ये? यही निरंतर की तपस्या है। कितनी सुंदर परिभाषा है तपस्या की। कौन सी? एक ही, सब कुछ एक, एक वही। दूसरा पॉलिश, दूसरों को बदलने का पॉलिश। तुम सोचते हो दूसरे बदल जाए, तुम सोचते हो दूसरों की बीमारी ठीक हो जाए, परंतु तुम्हारे सोचने से या तुम्हारे कहने से कुछ होने वाला है? चिंता चिंतन करने से कुछ होने वाला है? ये युक्ति बताई है बाबा ने यहां पर सात, जिससे तुम दूसरे को बदल सकते हो। माताएं विशेष, पिछले संडे भी कहा था, पति ज्ञान में नहीं, बच्चे ज्ञान में नहीं, परिवार साथ ही नहीं, धंधे में कुछ कुछ है, क्या किया जाए? सात विधि बाबा ने यहां बताई है। दूसरी पॉलिश है दूसरों को बदलने की पॉलिश। सबसे पहले खुद हल्के रहो और उड़ने का अनुभव करो। काम दूसरों पर नहीं, द अदर इज हेल। कहां काम करना है? स्वयं पर। दूसरों का कल्याण चाहते हो तो क्या करो? स्वयं हल्के रहो और उड़ते रहो, पहला। दूसरा, बर्तन को खाली। क्यों नहीं होता, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, होता क्यों नहीं, कब होगा, कब ज्ञान में आएंगे, ये सब से बुद्धि को नहीं भरो। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, खाली कर दो। हर एक के भक्ति के, भक्ति का हिसाब किताब जब तक है तब तक वो नहीं आएगा। इसके लिए क्या कर दो? बुद्धि का बर्तन खाली। ये सारी चीजें वहां ना हो, खाली कर दो इसको। तीसरा, स्वयं शक्ति स्वरूप। काम दूसरों पर नहीं करना है, जिसको ज्ञान में लाना है। काम कहां करना है? स्वयं शक्ति स्वरूप। चौथा, सर्वशक्तिवान साथी। पांचवा, शुभ भावना। छठवा, अगर बंधन में हो तो याद से काटो बंधनों को। और सातवा, स्वयं को छुड़ाओ। दूसरों को छुड़ाने की चिंता नहीं, दूसरों को नहीं छुड़ाओ, किसको छुड़ाओ? स्वयं को ही छुड़ाओ। ये सात विधि है दूसरों को परिवर्तन करने की, दूसरों को ज्ञान में लाने की। इसमें कहीं पर भी दूसरों पर फोकस है ही नहीं। फोकस कहां है सारा? स्वयं पर, स्वचिंतन पर है, दूसरों पर नहीं। सारे जो प्रश्न है मन में भरे हुए, खाली कर दो उससे उसको। हम कहते हैं प्रश्न दूसरों की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु उदाहरण बहुत सुंदर दिया जाता है। एक कुआ है जिसमें पानी है ही नहीं, और उसमें एक बकेट ऊपर से डाली जाती है। एक दूसरा कुआ है जिसमें पानी है, बकेट गई, पानी ऊपर आया। पानी है इसलिए ऊपर आया, अगर पानी हो ही नहीं तो बकेट में पानी आएगा? नहीं आएगा। तो कारण बकेट नहीं है, कारण पानी है। अगर भरा हुआ है चिंताओं से और हम कहे ये बकेट कारण है, दूसरा कारण है, तो नहीं कहा जाएगा। है इसलिए तो आ रहा है, किसी और की वजह से नहीं है, किसी और की वजह से क्रोध नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं छिपा हुआ। तभी तो परिस्थितियां तो निमित्त बन रही है, व्यक्ति निमित्त बन रहे हैं, परंतु वो उसको बाहर ला रहे हैं। अगर अंदर ही ना हो तो बाहर कैसे आएगा? अगर बाहर आ रहा है, कोई विशिष्ट परिस्थिति में भी आ रहा है, इसका मतलब पानी है। खाली हो जाओ। तो दूसरा पॉलिश कौन सा लगाना है? दूसरों को परिवर्तन करने का पॉलिश। कौन सा? सब अंदर ही है काम। तो तीसरा पॉलिश, स्वयं को भरने का पॉलिश। दूसरा बताया, खाली करने का। तीसरा क्या है? स्वयं को सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरने का पॉलिश। एक भी खजाना खाली ना हो। खाली होंगे तो क्या होगा? माया दस्तक देगी, माया हलचल होगी। इसलिए क्या कर दो? डबल लॉक, डबल बिजी। इसलिए क्या कर दो? याद और सेवा का लॉक लगा दो। ये नहीं कहो हम तो है ही याद में, है ही याद में तो खुशी कहां है, है ही याद में तो वर्षा क्यों नहीं ले रहे। ये अलबेलापन नहीं दिखाओ कि हम तो है ही याद में। स्वयं को सर्व खजानों से भर देना। क्या कर देना? खाली नहीं। खाली रहोगे तो हलचल होगी। ये भी नहीं कहना कि ये खजाना तो है ये नहीं है। सहन करने की शक्ति है, शांति की शक्ति नहीं है। सारी शक्तियों को स्वयं में भरना, उसके लिए शक्तिशाली अमृत वेले की आवश्यकता है, शक्तिशाली योग और शक्तिशाली ज्ञान का चिंतन। तभी आत्मा भरपूर होगी, खाली नहीं होगी। तो दूसरा बताया, बुद्धि को व्यर्थ से खाली कर दो। और तीसरा बताया, कौन सी पॉलिश लगाओ? स्वयं को सर्व खजानों से भरने की पॉलिश। और खजाने सारे अंदर ही है। पॉलो कोहलो के द्वारा लिखी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, द अल्केमिस्ट। उसका जो नायक है सैंटियागो, उसको स्वप्न में आता है कि बहुत दूर इजिप्ट के पिरामिड के नीचे खजाना गड़ा हुआ है, और निकलता है एक लंबी यात्रा पर। दिखाया है कैसे कैसे वो लोगों से मिलता है, कभी राजा से, कभी किससे, तो कभी किससे और कभी किससे। बहुत लंबे समय के बाद वहां तक वो पहुंचता है, पर वहां पर खजाना जो भी उसे मिलता है डाकू सारा लूट ले जाते हैं। और उसमें का एक डाकू उसको बताता है, अरे तुम जो खजाना लेने आए हो वो तो वही है जहां तुम्हारा घर है, उन खंडरों में। वो वहां है, यहां नहीं है, वो तो वही है, उस चर्च रूपी जो खंडर है वही गड़ा हुआ है। वो कहानी वहां पूरी होती है कि जिस खजाने को तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है कहीं, कहां है? अंदर ही है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर नहीं है वो। स्वयं को सर्व खजानों से भर देना। तीसरा, चौथा पॉलिश, स्वयं को पूज्य स्वरूप में स्थित कर देना। मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वो कौन है? तुम हो। पुजारी से तुम क्या बन गए हो? पूज्य बन गए हो। मंदिर में मूर्ति को कहां रखा जाता है? ऊपर। नीचे नहीं रखा जाता है। अगर नीचे रखेंगे तो कोई मान नहीं देगा। यहां पर भी तुम अपने स्थिति रूपी आसन को ऊंचा कर दो। ये नहीं कहो कि दूसरे रिगार्ड नहीं देते। दूसरे रिगार्ड तब देंगे, कब? जब तुम स्वयं स्वयं को रिगार्ड दोगे, जब तुम स्वयं स्वयं को मान दोगे, अर्थात जब तुम स्वयं समान में स्थित होंगे। स्वयं स्वयं को रिगार्ड देना अर्थात समान। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, इस चिंतन में रहना। मंदिरों में जिसकी पूजा हो रही वो मैं हूं, मंदिरों में जिसे के सामने भक्त कीर्तन कर रहे हैं वो किसका कीर्तन है? मेरा कीर्तन है। तो यदि मैं इतना श्रेष्ठ हूं, इतने मेरे दिव्य गुण है, श्रेष्ठ कर्म है, तो ये संकल्प कैसे आ सकता है? ये तो मांगने का संकल्प है कि मुझे रिस्पेक्ट दो, रिगार्ड दो। एक भिखारी किसी व्यक्ति के पास आता है और भीख मांगने लगता है, तो वो व्यक्ति उसे इतनी डांट पिला देता है कि कभी उसने इतनी डांट नहीं खाई होगी। और उस भिखारी को कहता है, तुम कुछ मेहनत का काम क्यों नहीं करते हो, केवल फुकट की रोटी खाते हो। तो वो भिखारी कहता है, क्या आपने कभी भीख मांगी है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं। मांग के देखो, सबसे ज्यादा मेहनत का यही काम है, इससे ज्यादा मेहनत का काम दुनिया में कोई है ही नहीं। और वास्तव में भीख मांगना ही वास्तव में सबसे मेहनत का काम है। कितनी योजनाएं बनानी पड़ती है जब किसी को मांगना पड़ता है कुछ, सम्मान दे दो, प्रेम दे दो, केयर दे दो, अटेंशन दे दो। क्या इससे मेहनत, इससे बड़ा कोई मेहनत का काम है दुनिया में? ये सबसे ज्यादा मेहनत का काम है। मांगना बंद करो, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, सब मिल जाएगा। स्वयं स्वयं को रिगार्ड दो, स्वयं स्वयं के मान, स्वयं स्वयं को सम्मान दो, स्वयं स्वयं को समान में स्थित करो। मैं पूज्य आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं वही हूं जिसका मंदिरों में कीर्तन अर्चन पूजन गायन हो रहा है। चौथा, पांचवी पॉलिश, झाटकू। कौन सी पॉलिश? झाटकू पॉलिश, नई पॉलिश निकली है ये। एक धक से सब कुछ स्वाहा करने वाले, ऐसे नहीं आज ये छोड़ा कल वो छोड़ेंगे परसों वो छोड़ेंगे। एक धक से छोड़ना है तो सीधा छोड़ दो। बाहर का खाना धीरे धीरे छोड़ा या एक धक से छोड़ा? कि सोचा आज इस दुकान का छोड़ता हूं, अगले महीने में दूसरे दुकान का खाना छोड़ूंगा, ऐसे सोचा? क्या कैसे छोड़ा? एक धक से छोड़ दिया, फिर ये बाकी क्यों नहीं छूटता विकार और उसके सूक्ष्म रूप? वो तो कितनी आसानी से क्यों छोड़ा जानना बहुत जरूरी है। एक धक से कैसे छूट गया? वहां क्यों नहीं सोचा नहीं 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 अभी एक महीना तो खा लेता हूं, फिर अगले महीना ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर धीरे धीरे एक एक छोड़ूंगा? ऐसा नहीं किया। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। संपूर्ण ज्ञान हो गया, संपूर्ण जागरण हो गया और तुरंत मुक्ति हो गई उससे। जब व्यक्ति को संपूर्ण किसी बात की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो अपने आप छूट जाती है। जब पता चल जाए व्यर्थ क्या है, जब क्रोध के नरक से आदमी गुजर जाता है और पता चल जाता है ये है काम का नरक, क्रोध का नरक, नहीं छूट रहा है अर्थात अंडरस्टैंडिंग अभी हुई ही नहीं है। संपूर्ण समझ अर्थात संपूर्ण मुक्ति। शायद नहीं समझे इसलिए मुरलियों में आता है, समझा समझा समझा। बाबा संदिग्ध है, उसे पता है किसी को भी कुछ नहीं समझ रहा है। अगर समझ गया तो छूट जाओगे। झटकू, एक धक से स्वाहा, एक धक से सब कुछ छोड़ने वाले। छठवा, मनसा शांति दूत। छठवा, शांति कुंड। बाहर चारों तरफ हलचल है, लोगों को क्या अनुभव हो यहां शांति मिल सकती है। बहन जी शांति दो, भाई जी शांति दो, शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। शांत स्वरूप में स्थित हो जाओ। वो जो संसार में शांति कुंड रचते हैं यज्ञ, वहां पर लोग आकर्षित हो जाते हैं तो क्या यहां नहीं होंगे? क्या इतनी शांति की शक्ति हमने अंदर भरी है? इस शक्ति की, इस साइलेंस पावर की पॉलिश आत्मा को लगानी है। इससे पॉलिश करनी है तो ये डायमंड चमकेगा। शांति कुंड। सातवा, तपस्या और त्याग। तपस्वी मूर्त, सेवाधारी अर्थात ही त्यागी, सेवाधारी अर्थात ही तपस्वी, सेवाधारी अर्थात टीचर अर्थात ही सेवाधारी। जैसे परवाने आते हैं लाइट को देखकर, वैसे तपस्या भी ज्योति है। इस दीप्ति को देखकर वो परवाने आ जाएंगे और तपस्वी बन जाएंगे। तो यदि आत्मा को चमकाना है तो क्या चाहिए? तपस्या। आत्मा को चमकाना है तो क्या चाहिए? त्याग। तपस्या और त्याग की पॉलिश। आठवीं मनसा सेवा, वाणी की सेवा से तो आत्माएं आती है, परंतु मनसा सेवा से जो आत्माएं निकलेगी, जो प्रत्यक्ष होगी, कैसी होगी? शक्तिशाली होगी, क्योंकि हमने धरनी को तैयार किया है। जिन आत्माओं का कोर्स कराना है, सुबह सुबह अमृत वेले जो लोग गाइड की सेवा करते हैं, वो उन सारी आत्माओं को इमर्ज करो जो आज सारे दिन भर में यहां ओम शांति भवन में आने वाली है, और उनको अमृत वेले ही ज्ञान सुना दो। यहां खाली रिविजन होगा जब वो सामने आएगी। अमृत वेले ही उनको बस दो बातें, तुम कौन हो और क्या हो, मैं कौन मेरा कौन, इनको वहीं वक्त पक्का करा दो बस। तो यहां ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बड़ी बेरहमी से हम लोग रहम करते हैं कभी कभी, एक एक घंटा पकड़कर चिंता होती है पता नहीं मिलेगा कि नहीं, ऑलरेडी सब जगह जाके पीस पार्क म्यूजियम, फिर यहां आते हैं, उनको जल्दी जाना होता है, परंतु हम भी सोचते कैसे इसको बाप का वर्षा ना मिलता है, देखता ही हूं आज, चाहे सेंटर जाए या ना जाए, पूरा 7 दिन का कोर्स 15 मिनट में तो इसकी बुद्धि में डाल के रहूंगा, तब तक नींद नहीं चैन नहीं। रहम में भी बड़ी बेरहमी है, तो काम क्योंकि खाली वाणी के तल पर चल रहा है, काम किस तल पर होना चाहिए? मनसा सेवा। तो आठवें नंबर की पॉलिश कौन सी है? मनसा सेवा की पॉलिश। नौवे नंबर की पॉलिश, पोस्ट अमृत वेला पॉलिश। 12 घंटे बाबा मुरली चला रहे हैं, उस 12 घंटे में इतनी बातें और न मालूम कितनी कितनी बातें हुई होगी, वो तो मुरली में छपी ही नहीं है। क्या क्या बाबा ने बैठकर कहा होगा, कौन कौन से ग्रुप मिले होंगे, किस किस को वरदान दिया होगा पर्सनल, वो सब तो बातें हैं ही नहीं 12 घंटे। तो नौवीं पॉलिश है बाबा के 3 रूप, बाप, बृहस्पति और टीचर। टीचर क्या कहता है? बधाई देता है। किस बात की? सभी सभी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स, पास विथ ऑनर, और स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाए उमंग उत्साह के साथ। बृहस्पति या भाग्य विधाता क्या कहता है? भाग्य की अविनाशी लकीर, बृहस्पति की दशा। वृक्षपति है, वृक्षपति का दिवस है गुरुवार। तो ये पॉलिश बाबा से, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, वृक्षपति का संबंध या भाग्य विधाता का संबंध, इस संबंध में वो क्या क्या कर रहा है, बधाई दे रहा है। मुरली में कहा है ये जो परचिंतन परदर्शन है, इसकी विदाई की बधाई समारोह मनाओ। क्या करो? विदाई का बधाई समारोह मनाओ। 10वीं पॉलिश, ये पॉलिश तब लगानी है जब उदास हो जाओ और अकेले हो जाओ। कौन सी पॉलिश है? माताएं बताएंगी। आज की मुरली में प्रश्न है आखिरी, उसका उत्तर। मैं बाप की, बाप मेरा, और पॉलिश कौन सी? शिव शक्ति। शिव की जो शक्ति है, इस वाक्य को लिख के रखो, शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं। बहुत पावर है इस वर्ड में, इस लाइन में। शिव की जो शक्ति है वो कौन है? मैं हूं। शिव की जो अर्धांगिनी है वो कौन है? मैं हूं। पावर ऑफ शिवा, मैं हूं। बहुत पावर है इसमें। केवल बोलने मात्र से स्थिति का अनुभव होता है। तो 10वीं पॉलिश कौन सी? मैं साधारण आत्मा नहीं, मैं शिव शक्ति कंबाइन। तो अकेले नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे। तो ये टोटल 10 पॉलिश है जो कि लगाते रहना है। तो क्या होगी? आत्मा चमकती रहेगी, आत्मा बेदाग रहेगी, आत्मा सच्ची रहेगी, आत्मा अमूल्य रहेगी, आत्मा नंबर 1 रहेगी। सबसे पहली पॉलिश सर्व संबंध एक से। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने दूसरों से मोह रखा और दुख न पाया। है कोई ऐसा? सबने अनुभव किया है, अगर इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में। सब कुछ गवा दिया तुमने, तन मन धन, बुद्धि भटकती रहती है, टाइम वेस्ट, पैसे वेस्ट, संकल्प वेस्ट, उस व्यक्ति का सोचते रहो। उसमें भी परचिंतन समाया है। परचिंतन उस रोमिंग के जैसा है, इनकमिंग और आउटगोइंग गोइंग दोनों के चार्जेस लगते हैं वहां। परचिंतन और परदर्शन किसके जैसा है? रोमिंग के जैसा है। खुद बोलो तो भी कटते हैं, ना बोलो खाली सुनो तो भी कटते हैं। इसके लिए रोमिंग को याद रखना। परचिंतन कर रहे हो मतलब आप रोमिंग में जा रहे हो, संभाल के। दूसरी पॉलिश, स्वयं दूसरों को परिवर्तन करने की विधि क्या है, उनके ऊपर काम करना ही नहीं है। सात विधि, पहली स्वयं उड़ती कला का अनुभव और हल्का, दूसरी विधि बर्तन को खाली कर देना, तीसरी विधि स्वयं शक्ति स्वरूप, चौथी विधि सर्वशक्तिवान सात, पांचवी विधि शुभ भावना। उनके प्रति शुभ भावना कभी ना कभी तो आएंगी, जाएंगी कहां, परंतु धैर्य धीरज, उनको भी अपना टाइम है, उसी टाइम पर आएगी वो, हमारे कहने या से नहीं आएगी। छठवी विधि याद, याद से बंधनों को काटो। सातवी विधि छोड़ दो, पकड़ के तुमने रखा है, छोड़ो, उनको भी छोड़ो और खुद भी छूटो। छोड़ो तब वो भागेंगे ना, तुमने तो पकड़ के रखा है, शायद तुम ही बाधा हो उनके ज्ञान में आने में। ये जो तुम रोक रहे हो, जो उनको बताते हो कि ज्ञान में आओ, इधर चलो, वहां चलो, सेंटर चलो, मधुबन चलो, शायद तुम ही एकमात्र बाधा है। हट जाओ उनके रास्ते से, तुम्हारा मोह ही बाधा है। जब तुम्हारा मोह नष्ट होगा तब वो ज्ञान में आएगी। तीसरी पॉलिश, स्वयं को भर दो। किससे भरेंगे? खजाने से। ये मत कहो कि हम तो है ही, दरवाजा बंद कर दो, स्वयं को डबल बिजी कर दो तो माया आ ना पाए और खजाने खाली ना कर दे। चौथी विधि, चौथी पॉलिश, पूज्य स्वरूप को याद करो। जिन जिन की पूजा हो रही है मंदिरों में वो मैं हूं। छठवी विधि तपस्या, पांचवी विधि झटकू, एक धक से सब कुछ छोड़ने वाला, धीरे धीरे नहीं, संकल्प कर दिया और छूट गया, फिर पूछे मुड़ के देखना नहीं। महान आत्माएं एक ही बार प्रतिज्ञा करती है, बार बार नहीं। कई पेशेंट्स आते हैं, उनको कहते हैं कि स्मोकिंग छोड़ दो, कहते हैं बहुत बार छोड़ा है, बहुत आसान है। दारू छोड़ना बहुत आसान है, इतनी बार मैंने किया है। महान आत्माएं एक ही बार प्रतिज्ञा करती है बस, परंतु ऐसी प्रतिज्ञा कैसी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी प्रतिज्ञा। अगला शांति कुंड, क्रोध होगा तो बकेट में आएगा, दोष बकेट का नहीं है, पानी है उसमें। अगला तपस्या, तपस्वी मूर्त, त्याग और तपस्या से स्वयं को भरना है। ये संगम युक्त तपस्या के लिए है, भोग और विलास के लिए नहीं, व्यर्थ के लिए नहीं, व्यर्थ दर्शन करने के लिए नहीं, अपने जीवन को, आत्मा को तपाना है तप से, वैराग से। अगला मनसा सेवा रोज करनी है सुबह शाम। अगला बाबा के तीन रूप, टीचर, भाग्य विधाता या बृहस्पति और शिक्षक, और भाग्य विधाता बृहस्पति वृक्षपति, अगला लास्ट शक्ति स्वरूप। तो अभी ट्रैफिक कंट्रोल होगा, उसमें ये जो 10 बातें बताई है मन ही मन उसको रिवाइज करेंगे और उसके स्वरूप में टिकने का अभ्यास करेंगे। साल पूरा हो रहा है, नया वर्ष आने वाला है, अगले 7 दिन स्वयं को शक्तिशाली स्थिति में स्थित करेंगे ताकि साल का जो पहला दिन होगा वो ऐसा शक्तिशाली हो जाए और जब बाबा के सामने हम बैठेंगे 31 तारीख को, तब हमारी स्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाए कि बाबा हमारी झोली वरदानों से भर दे। ऐसे उड़ती कला के पुरुषार्थी आत्माओं को, ऐसे व्यर्थ के सर्वसंग से दूर रहने वाली आत्माओं को, ऐसे विशेष आत्माओं को, ऐसे प्राप्ति स्वरूप आत्माओं को, ऐसे संपूर्णता के रंग में रंगने वाली आत्माओं को, ऐसे समय से पहले संपन्न, स्वयं को संपन्न बनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।